ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் வைதிக் சாந்தி மந்த்ரா பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஹரிஹரானந்த சாகர்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
அப்ப வேதாந்த ஸ்ரவண கர்ற மானோ तो वेदांत श्रवण में कई एक ऐसे विघ्न आते हैं। श्रवण से अध्ययन लीजिए कि वेदांत का हम अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो कोई कम विघ्न आते हैं क्या? जैसे शुरुआत में बताया, बाह्य विघ्न और आंतरविघ्न। तो बाह्य विघ्नों को तो जैसे मानो कि ये जो प्रक्रिया बताई उससे दूर कर दिया, लेकिन संसार का स्वरूप ही ऐसा है कि वो भी फिर उठ खड़े हो जाते। ठीक है, मानो कि बाह्य विघ्न समाप्त जिसके हो गए हैं, किंतु ये जो अंतर विघ्न है वो जिसके रह गए हैं, वो अंतर विघ्न को दूर करने के लिए जो वेदांत का अध्ययन करने का जो अधिकारी है, उस अधिकारी के लिए यहां पर ये प्रार्थना बताई गई है। शांति मंत्र को प्रार्थना भी कहते हैं। देखिए, प्रार्थना का ये स्वरूप है, हमारे यहां जो प्रार्थना का स्वरूप है वो ये नहीं कि हम ईश्वर से मांगते रहे। लोक में प्रार्थना उनको कहते हैं जो ईश्वर से मांगना। मांगना तो बहुत बुरी चीज है, चाहे ईश्वर से भी। अरे ईश्वर हमको बिना मांगे ही दे रहे, तो मांगना फिर भी तो ईश्वर को अच्छा लगेगा। बताइए, आप ही व्यवहार में अनुभव करें, आप किसी को देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं, और आप जानते हैं कि मैं उनको पूर्णतः संतुष्ट रखता हूं, फिर भी वो मांगता ही रहे, तो आप उससे राजी होंगे कि नाराज होंगे? बताइए, नाराजी होंगे। तो ईश्वर हमसे नाराज नहीं हो जाएंगे हम मांगते रहे प्रार्थना में? ईश्वर को तो संतुष्ट व्यक्ति अच्छा लगता है। भगवान ने कहा संतुष्ट सततम, गीता के 12वें अध्याय में कहा कि नहीं, जो संतुष्ट है वो मेरे को बहुत प्रिय है, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, यदि भगवान को खुश करना है तो भगवान ने 12वें अध्याय में जो 7 श्लोक में जो लक्षण बताए, वो यदि हमारे जीवन में आ जाए तो हम भगवान के ही प्रिय हो जाए। तो होता तो ऐसा देखा जाता है कि हमको कोई व्यक्ति प्रिय होता है तो हम उनको सब देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनको कहना नहीं पड़ता। यदि हमारा जीवन ईश्वर को प्रिय है, हमारे जीवन में ऐसे लक्षण है कि ईश्वर को प्रिय है, तो ईश्वर हमको वो अपने आप आवश्यक जो चीज है, वैसे तो सबको उन्होंने पहले से ही दे रखी है जो भी आवश्यक चीज है। इसलिए ईश्वर से मांगना ये प्रार्थना नहीं है। इसमें जो है कोई सांसारिक पदार्थ नहीं मांगे गए हैं, केवल विघ्न निवृत्ति मांगी गई है। दूसरी बात यह है भी कि हमारे यहां मंगलाचरण की बड़ी दिव्य परंपरा है। आप चाहे कोई भी ग्रंथ उठाइए, उसमें पहले ही मंगलाचरण होता है। बड़ी दिव्य परंपरा है आचार्यों की। यद्यपि मंगलाचरण मनोमन भी किया जा सकता है, लेकिन सभी आचार्यों ने मंगलाचरण को ग्रंथ के साथ जोड़ा है और उसके लिए हमारे आचार्य कहते हैं शिष्य शिक्षा, यही शिष्य को शिक्षा मिले इसलिए ग्रंथ के साथ जोड़ते हैं। मंगलाचरण करने से विघ्न का विघात होता है और यह निश्चित बात है, कभी भी उसमें संदेह नहीं करना कि यदि हम ऐसा करेंगे तो विघ्न की निवृत्ति हुई या नहीं हुई यह आप बता नहीं सकते, हो गई है। आपके कार्य की सफलता यह बता रही है कि विघ्न का विघात जरूर हुआ है। यदि हम ये प्रार्थना करते हैं और वेदांत सुनने में हमारा मन लगता है तो यह निश्चित बात है कि विघ्न की निवृत्ति हुई है। इसलिए मंगलाचरण जरूर किया जाता है और आदि में ओमकार का उच्चारण वो परम आवश्यक है, क्योंकि ओम और अथ ये दो मंगलवाची है। ओमकारश्चाथ शब्दश्च द्वावे तौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिका बुभौ। आचार्यों ने ऐसा कहा, ओंकार और अथ ये दोनों जो शब्द है वो ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए हैं। कंठम भित्वा, ब्रह्मा जी के कंठ का भेदन करके ये ओंकार और अथ ये दोनों शब्द निकले हुए हैं। कंठम भित्वा विनिर्यातौ और कंठ का भेदन करके निकले हैं, इसलिए तस्मात मांगलिका उभौ, इसलिए वो दोनों मांगलिक है। इसलिए आप हम लोग कोई भी मंगल कार्य करते हैं तो ओमकार का उच्चारण अवश्य करते हैं, इसलिए विघ्न दोष दूर हो जाते हैं। देखिए, आप गीता के 17वें अध्याय में भी भगवान ने यह कहा है कि हम यज्ञ दान व्रत जब करते हैं तो उसमें सात्विकत्व का संपादन करना है तो ओम तत्सत का उच्चारण करते हुए यदि करें तो उसमें सात्विकत्व का निर्माण होता है। ओम तत् और सत ये तीनों शब्द वो ब्रह्म का स्मरण करने वाला है। ओम से भी ब्रह्म की उपस्थिति हो जाती है, परमात्मा उपस्थित हो जाते हैं हमारे सामने, समझ लो। परमात्मा के लिए उपनिषद में ओम नाम है, ओमकार परमात्मा का नाम है, वाचक है। ओमकार का उच्चारण करते हैं तो परमात्मा झट से जवाब देते हैं, हाँ भाई क्या बात है, और तत् वो भी परमात्मा का नाम है। तत्त्वमसि महावाक्य में परमात्मा के लिए तत् शब्द का प्रयोग है, तत्त्वमसि, और सत भी परमात्मा का नाम है। परमात्मा के लिए सत शब्द का प्रयोग हुआ छांदोग्य के छठे अध्याय में कहा, सद एव सौम्य इदम अग्रे आसीद एक निवादिती हम। तो ये ओम और अथ ये दोनों शब्द मांगलिक है, इसलिए यदि हम मांगलिक कार्य में इन दोनों का उच्चारण करते हैं तो मांगलिक कार्य में जो आने वाले विघ्न है उस विघ्न का विघात हो जाता है। और मंगलाचरण जो है जो किया जाता है वो तीन प्रकार का किया जाता है। जिसमें देवताओं को नमस्कार किया जाता है प्रधान रूप से, उसको नमस्कारात्मक मंगलाचरण कहते हैं। जिसमें पढ़ने वाले को आशीर्वाद दिया जाता है उस मंगलाचरण को आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहते हैं। और जिसमें वस्तु का निर्देश किया हुआ रहता है वैसे मंगलाचरण को वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहते हैं। तो ये पौराणिक मंगलाचरण में ये है प्रक्रिया। और देखिए ये जो हम विचार कर रहे हैं वो है वैदिक मंगलाचरण, इसको वैदिक शांति पाठ कहते हैं। वैदिक का अर्थ है वेद द्वारा प्रतिपादित, जो वेद के द्वारा प्रतिपादित है उनको वैदिक कहते हैं। देखिए जो हमारा सनातन धर्म है वो भी कैसा वैदिक है, जो वैदिक है ना वही सनातन है। इसलिए धर्म का नाम भी सनातन इसलिए है कि वो वैदिक है, वेद द्वारा प्रतिपादित है। हमारे यहां मीमांसा के आचार्य कहते हैं वेद प्रतिपाद्यत्वे सति प्रयोजनवद अर्थत्वम धर्मत्वम, वेद के द्वारा जो प्रतिपादित हो प्रयोजनवद हो और अर्थ से युक्त हो उनको धर्म कहते हैं। हमारा जो धर्म है वो वेद के द्वारा प्रतिपादित है इसलिए वो वैदिक है। वैसे ये जो शांति पाठ है वो वेद के द्वारा प्रतिपादित है, वेद में वेदोक्त है, वेद में कहा गया है इसलिए वैदिक। और शांति के लिए प्रार्थना की गई है इसलिए शांति पाठ। हम लोगों का स्वभाव है शांत, इसलिए हम शांति की खोज करते रहते। शांति चाहिए हम सबको, किसी को भी अशांति नहीं चाहिए। थोड़ी भी अशांति का कारण उपस्थित हो जाता है तो हम लोग जो है विचलित हो जाते हैं। इसलिए शांति कर मंत्र हम पढ़ते हैं। और ये जो मंत्र है खास करके वेदांत का स्वाध्याय जब हम करने बैठते हैं तो सबसे पहले ये शांति मंत्र का उच्चारण किया जाता है ताकि वेदांत का स्वाध्याय करने में जो विघ्न है बाधाएं है वो दूर हो जाती है। तो नाना प्रकार के जो विघ्न है उस विघ्न की निवृत्ति के लिए ये शांतिकर मंत्र ये उपनिषद में बताया गया है। सबसे पहले हमारे यहां जो परंपरा है दस शांति पाठ करने की, उसमें सबसे पहले जो शांति पाठ किया जाता है वो उनका स्वरूप है, देखो आपके सामने है, हम लोग पढ़ते हैं, साथ में ही पढ़ेंगे। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ये जो दस शांति पाठ है उन्हें सबसे पहले ये पढ़ा जाता है। देखिए ये जो शांति पाठ है वो कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखा के जो उपनिषद है जिसको हम तैत्तिरीय उपनिषद बोलते हैं उनका सबसे पहला ये प्रथम अनुवाक का प्रथम वल्ली का प्रथम अनुवाक का प्रथम मंत्र है। उपनिषद चारों वेद में पाई जाती है, उन चारों वेद में जो यजुर्वेद है वो कृष्ण और शुक्ल के प्रकार से दो माने गए। और वेद की कई एक शाखाएं हैं भिन्न भिन्न वेदों की, उसमें जो कृष्ण यजुर्वेद की जो है भी शाखा है, उसमें एक शाखा है तैत्तिरीय शाखा। तैत्तिरीय शाखा का ये जो है तैत्तिरीय उपनिषद है उनका ये मंत्र है। तो जैसे अभी मैंने कहा कि अंतकण की शुद्धि के बिना ब्रह्म विद्या की प्राप्ति असंभव है, और उपनिषद से अभिप्राय है ब्रह्म विद्या, तो अंतकण की शुद्धि के लिए इस उपनिषद में पहले शिक्षा का प्रतिपादन है, शिक्षा बताई जा रही है, और वो शिक्षा में नाना प्रकार की जो विघ्न की प्राप्ति जो होती है उसकी निवृत्ति के लिए ये मंत्र बताया गया है। तो उस समय देवताओं से प्रार्थना की गई है शांति की। देखो सबसे पहले क्या कहा, शम नो मित्रः शम वरुणः शमनः भवत वर्यम शमन इंद्रो बृहस्पति ही शम नो विष्णु रुरुक्रमः। सबसे पहले देखो मित्र देवता से शांति की प्रार्थना की गई और वरुण देवता से, अर्यमा देवता से, इंद्र और बृहस्पति और फिर विष्णु से। तो एक हुए मित्र, दूसरे हुए वरुण, तीसरे है अर्यमा, चौथे इंद्र है, पांचवे देवता है बृहस्पति और छठे है विष्णु। अब देखिए पहले मित्र देवता से कहा गया कि मित्र न शम भव, तो लगा लीजिए मित्र न शम भवतु। मित्र देवता से कहा गया कि हे मित्र देवता न, यानी हमारे लिए शम भवतु, आप शम यानी सुखकर हो। शम शब्द है वो शांति के लिए है, शम यानी शांति, इसलिए जो शांति के देवता है, शांति करते हैं, उसको हम शंकर कहते हैं। शम करोति इति शंकर। यहां पर मित्र देवता से कहा गया कि मित्र न, हमारे लिए आप सुखकृत हो, सुखकारी हो। तो मित्र से यहां पर अभिप्रेत है दिवस के अभिमानी देवता और प्राण वृत्ति के अभिमानी देवता, ये दोनों यहां मित्र शब्द से ग्राह्य है। दिवस और प्राण वृत्ति के अभिमानी जो देवता है, वो देवता से यहां पर प्रार्थना की गई कि वो हमारे लिए शांतिकर हो। देखिए ये देवताएं जो है वो कहीं बाहर नहीं है, कहां रहते हैं वो, हमारे ही अंदर रहते हैं, भिन्न भिन्न रूप से इन सभी देवताओं का हमारे शरीर में ही स्थान है। हमारी जितनी इंद्रिया है वो सभी इंद्रिया के अपने अपने अभिमानी देवताएं हैं। ज्ञान इंद्रियों के अपने अपने अभिमानी देवता है, कर्म इंद्रियों के भी है और ये प्राण वृत्ति के है। ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेन्द्रिया और हमारे पास प्राण भी है। देखिए हमारा ये जो शरीर है वो किससे टिका हुआ है, प्राण से टिका हुआ है। देखिए आप चक्षुरिंद्रिया आदि है जो ज्ञानेन्द्रिया, उसमें से एकाध न हो तो चल भी जाता। कर्म इंद्रिया में से भी कोई एकाध वृकण हो जाती है तब भी चल जाता, किंतु प्राण न हो तो कुछ कर सकते हैं। इसलिए पहले प्राण चाहिए, इसलिए सबसे पहले ये प्राण वृत्ति के अभिमानी देवता से प्रार्थना की गई कि हमारे प्राण का विच्छेदन न हो, हमारा जो प्राण है वो सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन हमारे शरीर में जो है विघ्न आते हैं, जो रोग है उस रोग में तीन कारण बताए गए हैं आयुर्वेद में, वात पित्त और कफ। तो उसमें एक कारण है वात यानी वायु। वायु जो है यदि स्थिर नहीं है तो क्या होगा, शरीर में तकलीफ होगी, बाधा होगी। तो क्या हम यहां पर बैठ करके वेदांत का स्वाध्याय कर सकते? नहीं। इसलिए वात पित्त और कफ ये तीनों संतुलित यदि हो तो हम स्थिर चित्त से वेदांत का स्वाध्याय कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा प्राण चलता रहे, यानी कि हमारा जीवन यदि लंबा हो तो हम जो है ये वेदांत का स्वाध्याय कर सके और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। इसलिए सबसे पहले कहा दिवस और प्राण वृत्ति के जो अभिमानी देवता है वो हमारे लिए सुखकारी हो। और उसके बाद वरुण देवता से कहा गया शम वरुण, वरुण देवता से अभिप्राय है रात्रि और अपान वृत्ति के जो अभिमानी देवता है उससे प्रार्थना की गई। और उसके बाद अर्यमा से और इंद्र बृहस्पति और विष्णु से, और इनको उपलक्षण मान करके यदि चले तो हमारे शरीर में जितनी भी इंद्रिया है उन सभी इंद्रियों के अभिमानी देवता यदि हमारे लिए प्रसन्न है तो हम स्वस्थ चित्त स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मन से स्वस्थ इंद्रिय से वेदांत का जो श्रवण है वो कर सके और अपना जो स्वरूप है उसको अधिगत करके ब्रह्म भाव को प्राप्त कर सके, यही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। अब इसका जो विशेष विचार है वो भगवान की कृपा होगी तो आगे किया जाएगा।